Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। ऑस्ट्रेलिया के स्किल वीजा माइग्रेशन प्रोग्राम को लेकर हाल ही में कई नई जानकारियां और घोषणाएं सामने आई हैं। विक्टोरिया के फाइनल एलोकेशन से लेकर अन्य राज्यों की तैयारियों तक, रीजनल वीजा के फायदे और चुनौतियां, और कौन से पेशे यानी ऑक्यूपेशंस इस वक्त सबसे ज्यादा मांग में हैं, ये सारी जानकारियां उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं जो ऑस्ट्रेलिया प्रवास करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में हमने मेलबर्न में स्थित पल्लवी अरोड़ा से बात की, जो एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं, और इन बातों को और गहराई से समझने की कोशिश की। पल्लवी जी, विक्टोरिया के 2025-26 स्किल वीजा प्रोग्राम की फाइनल एलोकेशन आ गई है, आपके हिसाब से इसमें पिछले वर्षों के तुलना में क्या क्या बड़े बदलाव देखे गए हैं?
पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहला जो बड़ा चेंज है वो लास्ट ईयर की जो स्टेट एलोकेशन आप देखेंगे 2024 से 2025 फाइनेंशियल ईयर की, उसमें आप देखेंगे कि 190 जो सब क्लास है स्टेट स्पॉन्सरशिप वीजा, उसमें 3000 एलोकेशन थी एंड 491 में 2000 थी। बट दिस ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर उन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए हैं, और 190 सब क्लास की बात करें तो उसकी एलोकेशन 2700 है एंड 491 जो कि हमारा रीजनल स्किल्ड वीज़ा है उसकी एलोकेशन 700 है। एक और बहुत बड़ी चीज़ हाईलाइट हुई है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। लास्ट ईयर देखा गया था कि उनकी विक्टोरिया की जो स्टेट नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट थी, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्ट्रीम विच वॉज ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम एंड दैट इज नो लॉन्गर देयर नाउ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 500 तक की प्लेसेस 491 वीजा के लिए पब्लिश की थी, बट इस साल उनकी वेबसाइट पे इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है एंड देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस टू। उसके अलावा जो ऑक्यूपेशंस हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करें विक्टोरिया स्टेट नॉमिनेशन की, उसमें लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मोस्टली सेम ऑक्यूपेशन को ही वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ, सोशल सर्विस, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन, दिस काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन को ही वो टारगेट कर रहे हैं। अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर की एलोकेशन और इस ईयर की एलोकेशन से बहुत कम है, और इससे बहुत ज्यादा टाइट कॉम्पिटिशन देखा जा सकता है विद दिस लेस कोटा।
विक्टोरिया के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, क्या उनके स्किल वीजा प्रोग्राम्स में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है?
जी, ऐसा ही कुछ बाकी स्टेट्स में भी देखा गया है। देर आर टू स्टेट्स जिनमें थोड़ी सी ज्यादा एलोकेशंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें तो लास्ट ईयर दोनों सब क्लास को 800-800 प्लेसेस एलोकेट की गई थी, बट इस ईयर देखा गया कि 850 जो 190 को एलोकेट किया गया और सेम एलोकेशन 800 491 को है। ऑल्सो जो क्वींसलैंड में अगर आप देखें लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 600 दोनों वीजा सब क्लास को एलोकेट किए गए थे, बट दिस साल सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। मोस्ट प्रोबेबली द रीजन इज कि क्वींसलैंड में ओलंपिक्स होने वाला है 2032 में, तो उसकी वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से वहाँ पे 1850 की स्टेट एलोकेशन है और 491 में 900 है. सो या
अच्छा, अगर स्टेट स्पॉन्सरशिप या फिर स्किल्ड स्पॉन्सरशिप की बात करें तो कौन से पेशों में यानी ऑक्यूपेशंस में सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है?
अगर आप स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात करें, सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन है जैसे कि ब्रिक लेयरिंग, कैबिनेट मेकर हो गए या कारपेंटर, पेंटर, उसमें सबसे ज्यादा स्टेट स्पॉन्सरशिप इन्वाइट देखे गए हैं. ऑल्सो अगर आप स्किल्ड इंडिपेंडेंट जो 189 वीजा है उसकी बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इनवाइट्स आए हैं वो भी कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन में आए हैं. ऑल्सो ये देखा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स में 80 पॉइंट्स पे भी इनवाइट आए हैं. सोशल वर्कर जो हमेशा हाई डिमांड पे है उसको भी 85 पे इन्वाइट्स आए हैं. अगर आप स्पेसिफिकली विक्टोरिया के इनविटेशन राउंड की बात करें जो रिसेंटली 18th नवंबर को हुआ है, उसमें दे डिड टारगेट अर्ली चाइल्डहुड टीचर 85 पॉइंट्स फॉर 190. एंड ऑल्सो देखा गया है कि रजिस्टर्ड नर्सेज को भी टारगेट किया गया. सो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन, हेल्थ ऑक्यूपेशन, टीचिंग ऑक्यूपेशन आर द मोस्ट डिमांडिंग ऑक्यूपेशन.
कई भारतीय एप्लीकेंट्स ज्यादा पॉइंट्स और इनविटेशन जल्दी पाने के लिए रीजनल वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं. बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए क्या आपके हिसाब से ये एक सही चुनाव है?
तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए डेफिनेटली मैं मोटिवेट करूंगी, इनकरेज करूंगी एप्लीकेंट्स को. अगर वो रीजनल सबर्ब में जाना चाहते हैं या वहाँ के लाइफस्टाइल से कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो नहीं भी कंफर्टेबल होते, बट इफ दे आर कंफर्टेबल एंड इफ दे कैन गेट अ जॉब इन देयर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जांपल आप अगर शेफ की बात करें तो 190 और 189 में 190 में इनवाइट्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हाई कट ऑफ है. और लुकिंग एट द नॉमिनेशन एलोकेशन जो पिछले साल से कम है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने के चांसेस हैं. तो उनके लिए सबसे, या अकाउंटेंट की बात करें, इन दोनों ऑक्यूपेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रीजनल में मूव करना, अगर वो इस फील्ड में अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं. बिकॉज द रीज़न वाई जॉब ढूंढना ज़रूरी है अगर आप विक्टोरिया में हैं, क्योंकि अगर आपके पास जॉब है तो आप 491 के लिए तभी एलिजिबल हो सकते हैं. इफ यू आर वर्किंग इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर अ जॉब बिफोर यू इवन टेक अ डिसीजन रीजनल, अगर आप रीजनल सबर्ब में मूव करना चाहते हैं.
जी अच्छा, आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में भारत से आने वाले स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए अक्सर काफी मौके होते हैं. क्या इस साल एलोकेशंस में इन सेक्टर्स को लेकर कोई बड़ा बदलाव देखा गया है?
यस, देर आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी में, जैसे कि इंजीनियरिंग या हेल्थ में. कंपटीशन लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा है ड्यू टू रिड्यूस्ड ओवरऑल स्टेट नॉमिनेशन प्लेसेस. बट अगर आप देखें हेल्थ सेक्टर में किसी ऑक्यूपेशन को, अगर आप हेल्थ सेक्टर में हैं और अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन को नॉमिनेट करें, फॉर एग्जाम्पल आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं या किसी भी अलाइड हेल्थ सेक्टर में हैं, आप डेफिनेटली फेवरेबल कैटेगरी में हैं. हेल्थ इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज एज अ शॉर्टेज प्रायोरिटी एरिया इन मेनी स्टेट्स. बट एक्चुअली में डिपार्टमेंट की अगर आप वेबसाइट देखें, वहाँ पे अनक्लियर है कि डिपार्टमेंट डज नॉट पब्लिश ऑन द वेबसाइट कि कौन सी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन को कितने एलोकेशन मिले हैं. इवन अगर हम 189 की बात करें, उसमें ऑक्यूपेशन सीलिंग है जिसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन की अपर लिमिट सेट की है. बट ये सब क्लास 194-91 जो स्टेट स्पॉन्सरशिप वीजा हैं उसमें अप्लाई नहीं होता. तो इसमें अगर आप स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की एलोकेशन की बात करें, दैट इज़ अ बिट अनक्लियर. ये डेटा ज़्यादातर वेबसाइट से पब्लिश नहीं होता. और अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको इनविटेशन जल्दी आए, तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंग्लिश स्किल्स पे फोकस करें. आप प्रायोरिटी लिस्ट देखें, हर जिस भी आप स्टेट में हैं वहाँ के प्रायोरिटी सेक्टर्स जो टारगेट करें उस लिस्ट को देखें. एंड ऑलवेज बी ओपन टू रीजनल नॉमिनेशन, जैसे कि हमने बात की 491 की. इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर चांसेस इन गेटिंग द इनवाइट.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Pallavi ji, anti-migration sentiment aur rallies ka kya skill visa allocations ya processing times par koi prabhav dekhne ko mila hai?
Ji, bilkul. Iska answer yes or no. Yes, isliye ki agar ye rally, jaise ki humne dekha ki recently 19th of October ko March for Australia rally hui, iska definitely impact padta hai Australian sentiments pe. But it is far more political than direct impact on visa processing. Because agar aap visa processing ki baat kare, that is more complex, more zyadatar unpredictable hai aaj ki date mein. Aur jo visa processing hai, that is directly related to, agar law ke perspective se dekha jaye, there is a ministerial direction of 105 jisme wo प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी ऑक्यूपेशन कौन से सेक्टर को सबसे पहले वो प्रायोरिटाइज करें. फॉर एग्जांपल हेल्थ है, अर्ली चाइल्डहुड टीचर है, उनको डेफिनेटली प्रायोरिटाइज किया जाएगा. उनका प्रोसेसिंग टाइम बाकी वीजा या बाकी ऑक्यूपेशन के कंपैरेटिवली जल्दी प्रोसेस होगा.
अच्छा, राजनीतिक बयानों में ये बात कही गई है कि प्रवास के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है. ऐसे बयान स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज या प्रोसेसेस को प्रभावित करते हैं क्या?
डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है माइग्रेशन एनवायरनमेंट को बाय प्रमोटिंग यू नो गवर्नमेंट्स की वो रिकंसिडर करें वीजा कैप्स और प्रोग्राम क्राइटेरिया को, इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. बट आयरॉनिकली अगर देखा जाए तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स अगर वो बात करते हैं कि माइग्रेशन लेवल्स आर टू हाई, तो बेसिकली उनका बेसिस है कि जो माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स है उसको बैलेंस करें इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ. क्योंकि रिसेंटली न्यूज में बहुत आता है कि इट्स वेरी कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, हाउसिंग क्राइसिस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सारी स्टेटमेंट पास की गई हैं. ऑल्सो अगर आप देखें कि अगर हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमांड है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑस्ट्रेलिया एंड टू बैलेंस द हाउसिंग क्राइसिस. एंड ऑल्सो देखा गया है कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, जिसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में 300,000 तक की शॉर्टेज देखी जाएगी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बाय 2027. तो अगर इसको नहीं फील किया गया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है. सो द आंसर इज येस और नो. इट कैन बी फेवरेबल बट इट कैन पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट. अगर और भी बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशन हैं जिससे ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट इवन फंक्शन, जैसे कि सोशल वर्क है, रजिस्टर्ड नर्स है, टीचर्स है, वो लोकली दे कांट फिल दिस शॉर्टेज, तो उसके लिए माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल. बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल से जो अनकॉमन ऑक्यूपेशन हैं जैसे कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गया या शेफ कुक हो गया, बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशन हैं जो शॉर्ट टर्म लिस्ट में लिस्टेड हैं, मे बी प्रोबेबली दे डू वॉन्ट टारगेट दोज ऑक्यूपेशन या फिर वो लिस्ट से हटा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड. बट एप्लीकेंट जो भी स्टेट स्पॉन्सरशिप को टारगेट करें, दे कैन ऑलवेज लुक फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा जैसे कि 482494.
अच्छा, EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरते समय कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो अक्सर लोग करते हैं और उससे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं?
एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है एप्लीकेंट्स में कि दिस इज जस्ट लाइक अ फॉर्म, बट बहुत सारे एप्लीकेंट्स इस चीज को फेवर करते हैं कि वो खुद ही ये फॉर्म फिल करके डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में स्किल सिलेक्ट में सबमिट करते हैं. बट बहुत इन द मेन टाइम होता क्या है कि बहुत सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट आप कर लेते हो जो भी वेबसाइट पे मेंशन है, या इमिग्रेशन की वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है. तो बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एप्लीकेंट्स करते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली रिड्यूस देयर चांसेस, या इनवाइट के बाद वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक्सपीरियंस की बात करें, मान लीजिए अगर आपने एक्सपीरियंस के पॉइंट्स ओवर क्लेम कर लिए, या आपने 3 साल के पॉइंट्स क्लेम कर लिए एंड उसमें से आपने कुछ हफ्ते या कुछ मंथ आपने 20 घंटे से कम काम किया, तो वो पीरियड आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं हो सकता. एंड अगर आपने वो पॉइंट्स क्लेम कर लिए और उसके बाद आपने इफ यू आर एबल टू सिक्योर एन इनवाइट, एंड अगर आप एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली यू नो जेपरडाइज एवरीथिंग, आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है. दूसरा ये भी बहुत देखती हूँ कि मैं बहुत सारे एप्लीकेंट क्या करते हैं कि क्वालिफिकेशन जब आप कर आप अपनी स्टडीज जब कर रहे होते हैं उस टाइम का एक्सपीरियंस आप क्लेम कर लेते हैं ईओआई में, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज दैट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द डे आपके एविडेंस देखेंगे एंड इट विल डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपका वीजा रिफ्यूज के चांसेस अगेन बढ़ जाएंगे. उसके अलावा ये देखा गया है कि जैसे रीजनल के पॉइंट्स, जैसे किसी ने रीजनल में स्टडी की है, रीजनल विक्टोरिया किसी भी रीजनल पोस्ट कोड में स्टडी की है, जनरली क्या होता है दे क्लेम द इंटायर 5 पॉइंट, बट होता क्या है अगर वो अगर दे आर नॉट लिविंग देयर बट ओनली इफ दे आर नॉट लिविंग बट ओनली स्टडिंग देयर, देन इवन ये जो 5 पॉइंट है आप क्लेम कर रहे हैं ईओआई में, दैट कैन पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, उससे आपका कल फ्यूचर में आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है. तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आपका वहाँ पे रहना और स्टडी करना दोनों बहुत जरूरी है टू क्लेम दिस 5 पॉइंट. तो मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी माइग्रेशन प्रोफेशनल को कॉन्टेक्ट करें ईओआई लॉन्च करते टाइम, डोंट डू डीआईवाई ऑन दिस.
स्टेट सिलेक्शन एक बहुत ज़रूरी कदम होता है कि हम कौन से शहर का चुनाव करें. आपके अनुभव में इस वक्त कौन से राज्य ऐसे हैं जो सबसे प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं?
इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है, बट ये चीज़ कौन सी स्टेट आप चूज़ करें स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए, दैट इज मेनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. सबसे पहला फैक्टर है आप ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं, आप उस स्टेट की जो स्टेट की रिक्वायरमेंट्स है, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट्स ऑस्ट्रेलिया में अलग है, एंड आपको स्टेट रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू मेक अ डिसीजन टू मूव टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो उस सबसे पहला आपको स्टेट रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. आप कौन सी ऑक्यूपेशन को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वींसलैंड की बात करें वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी ऑक्यूपेशन को टारगेट करते हैं, अगर आप विक्टोरिया की बात करें यहाँ पे हेल्थ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज, अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग, सोशल वर्कर को टारगेट किया जाता है. तो आप कौन सी ऑक्यूपेशन को टारगेट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है. द अदर थिंग इज जैसे फॉर एग्जांपल आप विक्टोरिया की रिक्वायरमेंट की बात करें, इट्स नेवर अबाउट पॉइंट्स. विक्टोरिया में कभी भी पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करते, नॉट लाइक 189. यहाँ पे आपको इन्वाइट इफ यू आर अगर आपको विक्टोरिया 190 टारगेट करना है, तो उसके लिए आपका एज, इंग्लिश स्कोर, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं कि नहीं, कितना सैलरी पैकेज है, आपका पार्टनर स्किल है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इन्विटेशन को सिक्योर करने के लिए. ऐसी और भी बहुत सारी ऑक्यूपेशन है जो डिफ़िकल्ट है, जिसमें डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है, जैसे कि अकाउंटेंट और शेफ की बात की थी पहले भी, उसमें वो रीजनल 491 वीज़ा को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज 491 में दे आर एबल टू गेट दे कैन गेट मोर पॉइंट्स, 15 पॉइंट स्टेट से आपको मिलते हैं, तो उसमें 491 वो टारगेट कर सकते हैं. अगर नहीं, इफ देर आर अदर ऑक्यूपेशंस, फॉर एग्जांपल शेफ है, कुक है, या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, रिटेल मैनेजर या ऑफिस मैनेजर है, दे कैन गो फॉर मोर, they can aim for employer sponsored visa, they can look for employers जो इस occupations में जहाँ पे skill shortage है and they can't fill it locally. So इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है बिफोर यू इवन डिसाइड कौन सी स्टेट पे जाना है या कौन सी स्टेट आपके लिए बेस्ट है।
SBS हिंदी पर आपने सुनी हमारी बातचीत रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट पल्लवी अरोड़ा से, जिन्होंने स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम से जुड़े कई पहलुओं पर आज हमसे चर्चा करी। ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की SBS हिंदी पर नबील हसन ने। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है। SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.